नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को खोलने के लिए रूस के साथ चर्चा कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। चेन्नई बंदरगाह और कामराजर बंदरगाह के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए चेन्नई पहुंचे केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सोनोवाल ने 148 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को खोलने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस बातचीत का उद्देश्य समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है। सोनोवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने देश के विकास को गति देने के लिए अपनी व्यापार और निवेश क्षमता में नई जान फूंकने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये गलियारा इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ये दोनों देशों के समृद्ध समुद्री इतिहास वाले दो ऐतिहासिक शहरों चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच विकास और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। सोनोवाल ने बाद में चेन्नई बंदरगाह पर 56 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं और कामराजर बंदरगाह पर 92 करोड़ रुपए की एक अन्य परियोजना का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ ने 2022-23 में खनिजों से रिकॉर्ड 12,941 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह आंकड़ा 2021-22 में अर्जित राजस्व को 636 करोड़ रुपए ज्यादा है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार सबसे ज्यादा 3,607 करोड़ रुपए लौह अयस्क से और उसके बाद 3,336 करोड़ रुपए कोयले से प्राप्त हुए। खनिज राजस्व के मामले में दंतेवाड़ा शीर्ष कमाई करने वाला जिला रहा। एक अधिकारी ने कहा, चूना पत्थर और बॉक्साइट से भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हुआ। दंतेवाड़ा ने 6,419 करोड़ रुपए, इसके बाद कोरबा ने 2,361 करोड़ रुपए, रायगढ़ ने 1,717 करोड़ रुपए, बालोद ने 760 करोड़ रुपए, बलोदा बाजार ने 315 करोड़ रुपए, कांकेर ने 386 करोड़ रुपए और सरगुजा ने 362 करोड़ रुपए का योगदान दिया। भू विज्ञान एवं खनन के संयुक्त निदेशक अनुराग दीवान ने कहा, राज्य सरकार ने राजस्व बंटवारे के आधार पर छत्तीसगढ़ में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य को 1,00,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विज्ञप्ति के अनुसार राजस्व बंटवारे की व्यवस्था के तहत पहली बार राज्य सरकार चूना पत्थर के दो ब्लॉकों की नीलामी में शामिल होकर 52.52 लाख रुपए अर्जित करने में सफल रही। भारत को एक से अधिक जीवंत शेयर बाजार की जरूरत है। प्रमुख शेयर बाजार BSE के प्रबंध निदेशक एवं CEO सुंदर रमन राममूर्ति ने ये राय देते हुए कहा कि वो शेयर बाजार को मजबूत करने तथा निवेशकों को अधिक लचीलापन देने के लिए अपने उत्पादों में बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BSE में योगदान करने वाली प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, दलालों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। राममूर्ति ने PTI भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, भारत को एक से अधिक जीवंत शेयर बाजार की जरूरत है और इसीलिए BSE को और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। हम अपने उत्पादों में बदलाव लाकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राममूर्ति ने जनवरी में BSE का कार्यभार संभालने के बाद एक्सचेंज को फिर से मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, हम 15 मई से कम लॉट आकार और शुक्रवार को एक नए एक्सपायरी चक्र के साथ सेंसेक्स और बैंकेक्स वायदा को फिर से पेश कर रहे हैं। सेंसेक्स 30 और बैंकेक्स डेरिवेटिव की पेशकश से निवेशकों को इन लोकप्रिय सूचकांकों में कारोबार करने का अधिक अवसर मिलेगा। राममूर्ति ने कहा, हम साप्ताहिक आधार पर विकल्प सौदों को पूरा करने के लिए नियामक से संपर्क करेंगे, जैसा कि अमेरिका में होता है। इसके लिए नियामक से मंजूरी ली जानी है। सोलन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसकी एक सहायक कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 212 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। सोलन इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को बताया, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ हथियारों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा कि ठेका 212 करोड़ रुपए का है। सोलर समूह औद्योगिक विस्फोटों का विनिर्माण करता है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। इस दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 179.16 अंक या 0.30% बढ़कर 59,834.22 पर पहुंच गया, जबकि 50 शेयरों वाला निफ्टी 46.75 अंक या 0.27% बढ़कर 17,670.80 पर था। सेंसेक्स में 30 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 17 में गिरावट दर्ज की गई। बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो और एसबीआई शामिल थे। अन्य एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान के निक्की में बढ़त थी, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट लाल निशान में था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 2,116.76 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।